इमेजिन करना थोड़ा अजीब लगता है, पर एक ऐसे इंसान के बारे में सोचिए जो दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मी का हिस्सा है।
हाँ, उस वक्त की सबसे बड़ी पावर।
बिल्कुल, एक हाई रैंकिंग रोमन आर्मी ऑफिसर जो आम सैनिक से लगभग 15 गुना ज्यादा तनख्वाह लेता है, जिसके पास बेहिसाब पावर है, लेकिन मिलिट्री के स्ट्रिक्ट रूल्स के हिसाब से उस व्यक्ति को आने वाले 20 साल तक, मेरा मतलब है लीगली शादी करने की इजाजत ही नहीं।
बाप रे, 20 साल तक, ये सुनने में काफी हार्श लगता है।
वही तो, उस सिस्टम में उन्हें कॉन्क्यूबाइंस रखनी पड़ती थी और जैसे ही ट्रांसफर होता था उन्हें अपना वो पूरा परिवार वहीं छोड़ के जाना पड़ता था।
एकदम स्ट्रिक्ट और इमोशनल अटैचमेंट से दूर रहने वाली ड्यूटी थी उनकी।
सही बात है। आज हमारी इस गहरी चर्चा का स्टार्टिंग पॉइंट एक ऐसा ही व्यक्ति है जो इन्हीं स्ट्रिक्ट रूल्स के बीच जी रहा था, पर जिसने एक ऐसे सिलसिले की शुरुआत की जिसने सदियों पुराने और उससे भी ज्यादा स्ट्रिक्ट धार्मिक नियमों को हमेशा के लिए तोड़ के रख दिया।
और यही इस चर्चा का सबसे मजेदार हिस्सा है।
हाँ, तो आज हम डॉक्टर क्रेग कीनर द्वारा दी गई एक्स 10 और 11 की लेक्चर सीरीज में उतर रहे हैं। इस मटेरियल में हमें आर्कोलॉजिकल डिटेल्स, कल्चरल हिस्ट्री और थियोलॉजी का एक ऐसा मिक्स मिलता है जो काफी माइंड ब्लोइंग है। ये दिखाता है कि कैसे एक बेहद एक्सक्लूसिव गेटकीप्ड कम्युनिटी अचानक से ग्लोबल मूवमेंट बन गई।
और अगर हम इस डीप डाइव के कोर मिशन की बात करें तो वो यही है। हमें ये देखना है कि जब डीपली रूटेड कल्चरल बाउंड्रीज मॉडर्न रियलिटी से टकराती हैं तो एग्जैक्टली क्या होता है।
राइट।
डॉक्टर कीनर के इस रिसर्च में मुझे जो बात सबसे फैसिनेटिंग लगी वो ये है कि उन्होंने सिर्फ इवेंट्स की लिस्ट नहीं दी है, उन्होंने उन साइकोलॉजिकल और सोशल बैरियर्स को एक्सप्लेन किया है जो उस वक्त के लोगों को तोड़ने पड़े थे।
मतलब ये नियम इसलिए नहीं तोड़े गए कि वो पुराने हो गए थे?
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो इसलिए तोड़े गए क्योंकि वो नियम लोगों को एक दूसरे से दूर रख रहे थे। ये चर्चा किसी के लिए भी एक बड़ा अहा मोमेंट हो सकती है।
तो चलिए बैकग्राउंड सेट करते हैं। फर्स्ट सेंचुरी का दौर है और सिजेरिया नाम के शहर में कॉर्नीलियस नाम का एक रोमन सेंचुरियन तैनात है, वही ऑफिसर जिसके बारे में हमने अभी शुरुआत में बात की।
हाँ, वही पावरफुल मिलिट्री मैन।
अपने उस पावर और उन अजीब मिलिट्री रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद रिकॉर्ड्स बताते हैं कि वो एक गॉड फियरर था। वो रोमन देवताओं की पूजा करने के बजाय एक अनजान यहूदी ईश्वर की तरफ आकर्षित था, और हाँ, वो गरीबों को दान भी देता था।
ये काफी अनोखी बात है उस दौर के हिसाब से।
वही तो मैं सोच रही थी, एक हार्डकोर मिलिट्री मैन का फिलॉसफी और अध्यात्म में इस तरह इंटरेस्ट लेना थोड़ा आउट ऑफ कैरेक्टर लगता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक सख्त ड्यूटी वाला आर्मी ऑफिसर जिसके पास निजी जिंदगी के लिए वक्त ही ना हो, वो अचानक से फिलॉसफी पढ़ने लगे।
सही एग्जाम्पल दिया आपने। और इस साइकोलॉजिकल शिफ्ट को समझने के लिए डॉक्टर कीनर ने अपने लेक्चर्स में एक बहुत ही पर्सनल पैरेलल ड्रॉ किया है। उन्होंने अपना खुद का एग्जांपल दिया है इसमें।
अच्छा, उनका खुद का एक्सपीरियंस?
हाँ, उन्होंने बताया कि जब वो 13 साल के थे तो वो कम्प्लीटली एथीस्ट थे, उन्हें भगवान पर कोई विश्वास नहीं था। पर एक दिन उन्होंने प्लेटो की फिलॉसफी पढ़ी, स्पेसिफिकली वो इमोर्टैलिटी ऑफ द सोल के बारे में,
यानी आत्मा की अमरता के बारे में।
एग्जैक्टली, उस एक कॉन्सेप्ट ने उनकी नींद उड़ा दी। उन्हें पहली बार अपनी मोर्टैलिटी का एहसास हुआ कि इंसान तो नश्वर है, और अगर आत्मा जैसी कोई चीज हमेशा रहती है तो किसी सुप्रीम अनंत शक्ति का होना जरूरी है।
वाओ, 13 साल की उम्र में ये सोचना काफी डीप है,
है ना? ये फिलोसॉफिकल बेचैनी उन्हें एथियज्म से निकालकर एक स्पिरिचुअल खोज में ले गई। अब कॉर्नीलियस का केस भी कुछ ऐसा ही था, बल्कि उससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स।
कॉम्प्लेक्स कैसे?
देखे, वो एक ऐसी रोमन सोसाइटी से आता था जहां गॉड्स को मैनिपुलेट किया जाता था सैक्रिफाइसेस के जरिए ताकि वॉर्स जीती जा सकें। पर कॉर्नीलियस को एक मॉरल और राइचियस रास्ता चाहिए था।
समझ रही हूँ।
वो मूर्ति पूजा से दूर था, एथिकली साउंड था, पर टेक्निकल टर्म्स में देखें तो उसने सर्कमसिशन नहीं करवाया था,
जिसका सीधा सा मतलब था कि वो एक आउटसाइडर ही था। ज्यूइश कम्युनिटी के स्ट्रिक्ट लॉज के हिसाब से बिना सर्कमसिजन के कोई उनके इनर सर्कल का हिस्सा बन ही नहीं सकता था। वो प्रैक्टिकली दहलीज पर खड़ा था, कंप्लीटली इन्वेस्टेड, पर एंट्री मना थी।
सही पकड़ा, वो सीखना चाहता था पर दरवाजे बंद थे। लेकिन यहां से नैरेटिव एक बहुत ही ड्रामेटिक टर्न लेता है। कॉर्नीलियस तैयार बैठा है पर सामने वाली कम्युनिटी उसके जैसे लोगों को एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है।
तो इस गैप को भरने के लिए किसी अंदर के आदमी को वो स्ट्रिक्ट रूल्स तोड़ने ही थे, और यहाँ एंट्री होती है पीटर की। हम अब शिफ्ट होते हैं जोप्पा शहर में। पीटर एक साइमन नाम के टैनर यानी चमड़े का काम करने वाले के घर रुका हुआ है।
और ये टैनर के घर रुकना अपने आप में एक बहुत बड़ा डिटेल है।
वैसे चमड़े के काम का मतलब है मरे हुए जानवरों को प्रोसेस करना, राइट? उस प्रोसेस में जो केमिकल्स और डिकेइंग एनिमल पार्ट्स यूज होते थे, उसकी वजह से वो पूरा इलाका भयंकर बदबूदार होता होगा।
बाप रे, बदबू तो ऐसी होती होगी वहां खड़े रहना मुश्किल हो। पर लोकेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। एक स्ट्रिक्टली ऑर्थोडॉक्स बैकग्राउंड से आने वाला व्यक्ति एक ऐसी जगह ठहरा है जिसे सोसाइटी फिजिकली और स्पिरिचुअली थोड़ा मार्जिनलाइज करके रखती थी,
मतलब सोसाइटी से थोड़ा कटा हुआ हिस्सा।
हाँ, पर यही वो सेटिंग थी जहां आगे चलकर दिमाग और माइंडसेट चेंज होने वाले थे।
यहां से चीजें सच में बहुत रोचक हो जाती हैं। दोपहर के लगभग 12 बजे हैं, पीटर छत पर प्रार्थना कर रहा है और उसे बहुत तेज भूख लग रही है।
भूख लगना बहुत नॉर्मल है 12 बजे।
बिल्कुल। तभी उसे एक विजन आता है। आसमान से एक बड़ी सी चादर जैसी कोई चीज नीचे आती है और उसमें दुनिया भर के जानवर भरे हुए हैं। उनके डायट्री लॉज के हिसाब से कुछ क्लीन और बहुत सारे अनक्लीन जानवर हैं उसमें।
हाँ, और फिर एक आवाज आती है जो उसे कहती है कि इन्हें मारो और खाओ।
एक सेकंड, यहाँ थोड़ा रुकते हैं। डॉक्टर कीनर का मटेरियल याद दिलाता है कि मैकबीज जैसी पुरानी जनरेशंस ने इस तरह का अनक्लीन खाना खाने के बजाय टॉर्चर सहना और अपनी जान देना बेहतर समझा था।
बिल्कुल, उन्होंने जान दे दी पर नियम नहीं तोड़े।
तो सोचिए, किसी स्ट्रिक्ट इंसान को वही चीज खाने को कहा जाए जिससे उसे सदियों से नफरत सिखाई गई है। अगर मुझसे कोई अचानक मेरे सबसे स्ट्रिक्ट नियम तोड़ने को कहे तो मैं डेफिनेटली पुशबैक करूंगी। पीटर ने भी तुरंत इनकार कर दिया कि उसने कभी कुछ अनक्लीन नहीं खाया।
और पीटर का वो इनकार पूरी तरह जस्टिफाइड था उसकी उस वक्त की कंडीशनिंग के हिसाब से। देखिए, लेविटिकस 11 के जो डायटरी लॉज थे वो सिर्फ हेल्थ गाइडलाइंस नहीं थे।
तो वो क्या थे?
वो एक्चुअली उनकी कल्चरल आइडेंटिटी के मार्कर्स थे। उनका मेन फंक्शन था उन लोगों को आसपास के बाकी राष्ट्रों से अलग और प्योर दिखाना। जब क्लीन और अनक्लीन जानवर एक ही चादर में साथ आए तो पुराने रूल्स के हिसाब से सब कुछ कंटामिनेट हो गया था।
ओ, मतलब एक साथ होने से ही शुद्धता खत्म हो गई।
हाँ, ऐसा ही विरोध प्रॉफिट इज़ेकियल ने भी किया था जब उन्हें अशुद्ध तरीके से खाना पकाने को कहा गया था। पर इस विजन का पॉइंट जानवरों के बारे में था ही नहीं।
वैसे ये बात काफी डीप है, तो पॉइंट क्या था?
ये बस एक मेटाफर था। ईश्वर जानवरों के सपने के जरिए दरअसल इंसानों को अपनाने का इशारा दे रहा था। जो बाउंड्रीज बनाई गई थी अलग दिखने के लिए, अब उन्हें डिसॉल्व किया जा रहा था।
मतलब अगर ईश्वर खुद किसी चीज को, या इस केस में जेंटाइल्स यानी गैर यहूदियों को, क्लीन डिक्लेयर कर रहा है तो पुराने नियम इरेलेवेंट हो जाते हैं।
एकदम सही। जब डिवाइन अथॉरिटी ने ग्रीन सिग्नल दे दिया तो इंसानों के बनाए रूल्स की क्या औकात।
यही सबसे माइंड बेंडिंग पार्ट लगता है मुझे। एक तरफ छत पर सदियों पुरानी थियोलॉजी डीकंस्ट्रक्ट हो रही है और ठीक उसी वक्त नीचे दरवाजे पर प्रैक्टिकली उसे टेस्ट करने के लिए कॉर्नेलियस के भेजे हुए लोग आकर खड़े हो जाते हैं।
व्हाट अ टाइमिंग है ना।
वही तो, वो लोग पीटर को बुलाने आए थे। अब किसी गैर यहूदी के घर जाना या उनके साथ बैठना तब के नियमों के हिसाब से स्ट्रिक्ट नो था। ये कम्प्लीटली अशुद्ध माना जाता था। पर पीटर अग्री कर जाता है।
और वो अकेले नहीं जाता, ये डिटेल बहुत जरूरी है।
हाँ, दिलचस्प बात ये है कि वो अपने साथ 6 विटनेसेस यानी गवाहों को लेकर निकलता है। अब ड्यूट्रॉनमी के हिसाब से किसी भी विवाद में लीगली वेरीफाई करने के लिए 2 या 3 गवाह काफी थे।
राइट, 2-3 लोग लीगली काफी होते हैं।
तो पीटर का 6 लोगों को साथ ले जाना क्लियरली दिखाता है कि उसे पहले से अंदाजा था कि वो जो करने जा रहा है उस पर आगे चल के भयंकर बवाल मचने वाला है। उसने विवाद से बचने के लिए एक्स्ट्रा इंश्योरेंस ले ली थी।
काफी स्मार्ट मूव था वो। वो सफर लगभग 30 मील लंबा था कैसेरिया तक का। और जब पीटर वहां पहुंचता है तो 2 बिल्कुल अलग वर्ल्ड्स आपस में टकराते हैं।
कैसे?
कॉर्नेलियस, जो एक हाई रैंकिंग रोमन मिलिट्री ऑफिसर था, वो आगे आकर पीटर के सामने झुक जाता है एक डिवाइन होमेज देते हुए। पगान कल्चर्स में देवताओं या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने इस तरह झुकना काफी आम बात थी। एम्परर्स को भी ऐसे ही रिस्पेक्ट दी जाती थी।
पर पीटर ने उसे तुरंत रोक दिया होगा, राइट?
बिल्कुल। एक डीपली रूटेड मोनोथीस्टिक बैकग्राउंड से होने के नाते पीटर का रिएक्शन इंस्टेंट था। उसने तुरंत उसे रोका और कहा कि मैं भी तुम्हारी तरह बस एक इंसान हूं।
ये काफी हम्बल रिस्पॉन्स था,
है ना? पीटर चाहता तो इस मोमेंट को अपनी ईगो को बढ़ाने के लिए यूज कर सकता था, पर उसने एग्जैक्टली वो किया जो उसे उस विजन में सिखाया गया था। उसने ऊंची नीची हायरार्की को तोड़ दिया। उसने साफ कह दिया कि हालांकि उनके कस्टमरी लॉजेस मीटिंग को अलाउ नहीं करते, पर अब किसी भी इंसान को अनक्लीन मानना गलत है।
एक लेवल प्लेइंग फील्ड सेट हो रही थी वहां, पर मुझे लगता है कहानी का सबसे बड़ा शॉक तो अभी आना बाकी था।
हाँ, वो इंटरप्शन वाला मोमेंट।
एग्जैक्टली। पीटर वहां खड़ा उन सबको एजुकेट कर रहा था और अचानक से एक बहुत बड़ा इंटरप्शन होता है। द होली स्पिरिट यानी पवित्र आत्मा वहां मैनिफेस्ट हो जाता है। डॉक्टर कीना की रिसर्च पॉइंट आउट करती है कि पीटर का सेंटेंस पूरा भी नहीं हुआ था और सब कुछ बदल गया।
सेंटेंस के बीच में ही सब कुछ शिफ्ट हो गया।
यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा लॉजिकल डिस्कनेक्ट लगता है उस वक्त के सोसाइटी के रूल्स के हिसाब से। अगर बिना किसी हैवी प्रेपरेशन के, बिना किसी रसम के और सबसे इम्पोर्टेंट बिना सर्कमसिशन के ही पवित्र आत्मा उन गैर यहूदियों को मिल गया, तो क्या सारे पुराने धार्मिक गेट कीपिंग वाले नियम बेकार नहीं हो गए?
ये एक बहुत ही जरूरी सवाल खड़ा करता है, और यही वो सवाल है जिसने उस वक्त की एस्टैब्लिश्ड रिलीजियस अथॉरिटी की नींद उड़ा दी थी। फर्स्ट सेंचुरी के माइंडसेट को समझना पड़ेगा इसके लिए।
तो क्या थे उनके रूल्स इस बारे में?
उस दौर में आम धारणा ये थी कि डिवाइन प्रेजेंस या होली स्पिरिट सिर्फ हिलेल जैसे एक्सट्रीम और पवित्र स्कॉलर्स के नसीब में ही थी। और उनके बारे में भी ये माना जाता था कि उनके आने वाली जनरेशंस उतने प्योर नहीं होंगी कि इस पावर को एक्सपीरियंस कर सकें।
अच्छा, मतलब ये एक बेहद एक्सक्लूसिव क्लब था।
वही तो।
हाँ।
तो ऐसे में एक कमरे में भरे हुए नॉन ज्यूइश लोगों को जिन्होंने प्रॉपर लॉज भी फॉलो नहीं किए थे, उन्हें ये प्रेजेंस कैसे मिल सकती है?
सच में ये तो उनके रूल्स के हिसाब से इम्पॉसिबल था।
पर उनका वहां दूसरी भाषाओं या टंग्स में बोलना इस बात का अनडिनाइबल सबूत था कि सांस्कृतिक दीवारें अब सच में गिर चुकी हैं।
जब ऐसी डिवाइन वैलिडेशन अचानक मिल जाए तो इंसानों द्वारा बनाए गए सारे चेकिंग मैकेनिज्म्स ऑटोमेटिकली फेल हो जाते हैं। और मुझे लगता है इसी रियलाइजेशन ने पीटर को फोर्स किया कि वो उन्हें बिना खतना या सर्कमसिजन के अपनाए। पर ऐसी चीजें बिना विरोध के कहाँ होती हैं? जब सदियों पुरानी दीवारें गिरती हैं तो आवाज बहुत दूर तक जाती है।
बैकलैश आना तो गारंटीड था।
जब पीटर वापस जेरूसलम पहुंचा तो उसे कट्टरपंथी लोगों द्वारा अग्रेसिवली आलोचना का सामना करना पड़ा। उसे प्रैक्टिकली कॉल ऑन द कार्पेट किया गया, यानी सफाई देने के लिए बुलाया गया। पर इंटरेस्टिंग डिटेल ये है कि उनका प्रॉब्लम इस बात से नहीं था कि पीटर ने उन्हें शिक्षा क्यों दी।
हाँ। उनकी प्रॉब्लम कुछ और थी।
उनकी ऑब्जेक्शन इस बात पर थी कि उसने उन अनसर्कमसाइज लोगों के साथ खाना क्यों खाया।
ये पॉइंट काफी क्रूशियल है। समझना बहुत जरूरी है कि एंशिएंट नियर ईस्ट में टेबल फेलोशिप या किसी के साथ बैठकर खाना सिर्फ खाना शेयर करना नहीं था, वो एक कवनेंट रिलेशनशिप, एक डीप सोशल कॉन्ट्रैक्ट का प्रतीक था।
मतलब आप उन्हें बराबरी का दर्जा दे रहे हैं।
एग्जैक्टली। जब आप किसी के साथ केबल शेयर करते थे तो आप डिक्लेयर कर रहे होते थे कि आप उन्हें अपने इक्वल, अपने फैमिली सर्कल का हिस्सा मानते हैं। कंजर्वेटिव माइंडसेट के लिए ये अनबेरेबल था,
क्योंकि जेनेसिस 17 कहता था कि परिवार का हिस्सा बनने की बेसिक कंडीशन सर्कमसिशन है।
वही तो, आप उसके बिना डायरेक्टली किसी को बराबरी का दर्जा नहीं दे सकते थे। इसीलिए जेरूसलम का वो फैक्शन इतना फ्यूरियस था। पर पीटर का डिफेंस काफी स्मार्ट और प्योरली थियोलॉजिकल था।
उसने क्या कहा सफाई में?
उसने आर्ग्यूमेंट ऑफ डिवाइन नेसेसिटी का यूज किया। उसने उन 6 गवाहों को पेश किया और लॉजिकली समझाया कि जब डिवाइन अथॉरिटी ने प्रैक्टिकली ईश्वर ने खुद इंटरवीन करके उन्हें चुना, तो मैं कौन होता हूं उनके रास्ते में खड़े रहने वाला।
वैसे ये एक मास्टर क्लास है क्राइसिस मैनेजमेंट की। लेकिन इस आलोचना के बावजूद इस एक घटना के कारण चर्च तेजी से फैलता है। ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसने इस मूवमेंट को गांवों कस्बों से निकालकर एक नया दौर दिया।
एंटियोक का दौर जिसे हम कहते हैं।
बिल्कुल। अब कहानी शिफ्ट होती है एंटियोक की तरफ। एंटियोक कोई छोटा मोटा शहर नहीं था, ये रोम और अलेक्जेंड्रिया के बाद तीसरा सबसे बड़ा और कॉस्मोपॉलिटन शहर था। करीब 500,000 लोग रहते थे वहां।
एक बहुत ही मैसिव मेट्रोपॉलिटन एरिया था वो।
हाँ, रोम की सीरियन लीजन के हजारों लॉयल सैनिक वहां पोस्टेड थे। हर तरफ अपोलो कल्ट और अलग अलग पेगन ट्रेडिशंस का स्ट्रांग होल्ड था। वहां वेल्थ थी, डाइवर्स एथनिसिटीज थी। मुझे एक एनालॉजी याद आती है।
कैसी एनालॉजी?
ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक छोटा सा रूरल स्टार्टअप अचानक से न्यूयॉर्क जैसी बिजी जगह पर ग्लोबल होने की कोशिश करे, क्या इतने अलग अलग कल्चर्स वाले शहर में एक पुरानी और सख्त सोच को लाना और डिजास्टर नहीं था?
अगर वो वही पुरानी रिजिड अप्रोच रखते तो डिजास्टर ही होता। अगर वो एंटीओक में वही एक्सक्लूसिव मेंटालिटी ले जाते तो उन्हें बस एक बैकवर्ड सेक्ट बोलकर रिजेक्ट कर दिया जाता।
तो वहां सर्वाइव कैसे किया उन्होंने?
यहाँ हेलेनिस्टिक जूस जो ग्रीक कल्चर और लैंग्वेज जानते थे, उन्होंने एक ब्रिज का काम किया। और इस नए एनवायरनमेंट में एक ऐसे लीडर का आना हुआ जो इस क्रॉस कल्चरल चीज के लिए एकदम परफेक्ट था, बार्नबास।
बार्नबास, इनका क्या स्पेशल रोल था?
तो डॉक्टर कीनर के मटेरियल में एक काफी स्ट्राइकिंग कॉन्ट्रास्ट दिया गया है। उन्होंने मार्टिन लूथर का उदाहरण दिया है, जो हालांकि सदियों बाद आए पर एक फिगर ऑफ चेंज थे। लूथर अपने बाद के सालों में बहुत सख्त और गुस्से वाले थे, उनका एटीट्यूड जीरो टॉलरेंस वाला था,
पर बार्नबास उनसे अलग थे,
एकदम ऑपोजिट। बार्नबास का अप्रोच रिजिड डॉक्ट्रिन्स के बजाय लचीलापन यानी फ्लेक्सिबल था। वो नए लोगों के पोटेंशियल पर ट्रस्ट करते थे। वो समझ गए थे कि एंटीओक के इन डाइवर्स लोगों को अपनाने के लिए उन्हें थोड़ा लचीला होना ही पड़े है।
और बार्नबास की इस मैच्योरिटी का सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि वो जानता था कि उसे अकेले ये नहीं करना है। वो लगभग 100 मील का सफर करके तार्सुस जाता है, सिर्फ इसलिए ताकि वो पॉल को मदद के लिए बुला सके।
100 मील का सफर उस जमाने में काफी बड़ा टास्क था,
है ना?
एक मीटिंग के लिए इतना लंबा ट्रैवल करना दिखाता है कि उसे पॉल की क्रॉस कल्चरल कैपेबिलिटीज पर कितना भरोसा था। उसे पता था कि पॉल इस कॉम्प्लेक्स एंटीओक इक्वेशन को सॉल्व कर सकता है।
और इस डायनेमिक ड्यूओ और इस फ्लेक्सिबल अप्रोच का असर ये हुआ कि वहां एक कम्प्लीटली नई आइडेंटिटी फॉर्म हुई, इस मूवमेंट को एक नई पहचान मिली।
हाँ, नए नाम और एक विश्वव्यापी परिवार का दौर शुरू हुआ। एंटीओक ही वो पहली जगह थी जहां इन लोगों को क्रिश्चियंस यानी मसीही कहा गया। पर दिलचस्प बात यह है कि शुरू में ये एक मजाक उड़ाए जाने वाला नाम था, एक निकनेम।
एकदम वैसा ही जैसे पॉलिटिकल पार्टीज के नाम पर लोगों को चिढ़ाया जाता था।
तो मतलब लोगों ने ओपनली टॉन्ट कर रहे थे। देखिये, एंटीओक के लोग अपने शार्प ह्यूमर और मॉकिंग के लिए काफी फेमस थे। उस दौर में लॉयलिटी फैक्शंस को उनके लीडर के नाम पर निकनेम देना आम बात थी। जैसे सीजर को मानने वालों को सीजेरियंस कहते थे, या हेरोड के समर्थकों को हेरोडियंस।
ओ अच्छा, तो क्राइस्ट को मानने वालों को क्रिश्चियंस कहने लगे ताने के रूप में।
वही तो, उन्होंने इस नए ग्रुप को हर वक्त क्राइस्ट के बारे में बात करते देखा तो छिड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन ब्यूटी इस बात में है कि उस ग्रुप ने इस इंसल्ट को रिजेक्ट करने के बजाय एम्ब्रेस कर लिया। उन्होंने उस मॉकिंग निकनेम को अपनी पहचान बना लिया।
ये अपने आप में बहुत पावरफुल बात है। पर एंटीओक के लोग सिर्फ नाम से अलग नहीं थे, उन्होंने प्रैक्टिकली दुनिया के लिए एक नई मिसाल कायम की। यहाँ एक प्रॉफिट आते हैं एगेबस नाम के, वो चेतावनी देते हैं कि क्लॉडियस सम्राट के दौर में एक भयंकर अकाल या फैमीन आने वाला है।
एक बहुत ही डेंजर वाली चेतावनी थी वो।
और इसके रिस्पॉन्स में एंटीओकी के इन अमीर और अपवर्डली मोबाइल लोगों ने जुडेया के गरीबों के लिए राहत सामग्री भेजी। अब तो इस सब का आखिर क्या मतलब निकलता है? आज हमारे लिए एक देश से दूसरे देश आर्थिक मदद भेजना आसान लगता है,
पर उस वक्त बिल्कुल नहीं था।
वही मैं सोच रही थी, रोमन एम्पायर के नजरिए से एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में ऐसी आर्थिक मदद भेजना बेहद शक के घेरे में आता होगा, या आसान तो बिल्कुल नहीं था।
आसान, ये प्रैक्टिकली ट्रीजन जैसा लगता था रोमन अथॉरिटीज को। रोम ऐसी मल्टी प्रोविंशियल बॉडीज को लेकर हेविली पैरानॉइड था। उनका मानना था कि अगर लोग बॉर्डर्स क्रॉस करके फंड इकट्ठा कर रहे हैं तो पक्का कोई बगावत प्लान हो रही है।
तो चैरिटेबल एक्टिविटीज अलाउ नहीं थी वहाँ?
चैरिटी स्ट्रिक्टली लोकल होती थी, आप अपने शहर या ब्लॉक की मदद करते थे। स्रोत के मुताबिक ऐसी ग्लोबल आर्थिक राहत का बस एक दो एक्सेप्शन मिलता है, जैसे रानी हेलेना का केस। पर आम नागरिकों का एक प्रोविंस से दूसरे में राहत भेजना, ये अनसीन था।
और अकाल तो एंटीओक में भी आने वाला था, उन्हें तो खुद की फिक्र होनी चाहिए थी पहले।
एग्जैक्टली, ये दिखाता है कि एंटीओक के लोगों ने दिखाया कि भले ही उनका कल्चर अलग था, पर अब वो एक ग्लोबल बॉडी बन चुके थे। वो सदियों पुरानी जाति और क्षेत्र की सीमाओं से कम्प्लीटली ऊपर उठ चुके थे।
वही तो बात है, अगर हम पूरा विश्लेषण करें तो चर्चा इस बात पर आकर सिमट जाती है कि कैसे लोगों की अहमियत को पुरानी परंपराओं से ऊपर रखा गया।
एकदम सही कंक्लूजन है ये।
कॉर्नीलियस की वो प्योर जिज्ञासा, पीटर का अपने डीपेस्ट फियर्स से लड़कर लचीलापन दिखाना, और फिर एंटीओक के इस नए मॉडल का प्रैक्टिकल सहारा देना, इन सब ने मिलकर सदियों पुराने बंधन तोड़ दिए।
इन्होंने प्रूव किया कि इंसानियत रूल से बड़ी होती है।
तो इस चर्चा को रैप अप करने से पहले सुनने वालों के दिमाग में गहरा सवाल छोड़कर जाना चाहती हूँ।
हम बताइए,
अगर 2000 साल पहले लोग अपने सबसे सख्त और पवित्र सांस्कृतिक नियमों को इसलिए तोड़ सकते थे ताकि वो नए लोगों को अपना सकें, तो आज के इस आधुनिक दौर में हमारी ऐसी कौन सी परंपराएं या नियम हैं जो हमें दूसरों से जुड़ने से रोक रहे हैं?
एक बहुत ही प्रोफाउंड सवाल है।
हमारे खुद के ऐसे कौन से अनक्लीन नियम हैं जिन्हें तोड़ने की जरूरत है एक बेहतर समाज बनाने के लिए? इस पर जरूर विचार कीजिए। और इसी थॉट के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।